তারা সেই ঘুরতে ঘুরতে ভিতরেই মাঝে এক কল্পিত গিয়া শরীর আপনা আর বলতে সে কালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত মে কৃষ্ণ কাকুন্ড এক হ্যাঁ নন্দগাঁও মে স্নান কিয়া ছাড়ু সে কিয়া আর উসি কে পাশ মে উদ্ধব প্যারি হ্যাঁ আর উদ্ধব প্যারি কাহে যা রহে কি পহলে থে ইসকা নাম কদম বখিয়া হমনে ভি দেখা হ্যায় ওহাঁ পর আজ সে 60 বর্ষ পহলে গুরু জি কে সাথ মে ওহাঁ পর লাখো কদম কে পে বড়ে বড়ে মোটে মোটে সব সময় ভিড়ি ভিড়ি সুগন্ধ গাতি থি কৃষ্ণ কি ওহাঁ পর রাস লীলা হুই থি গোপিয়ো সে ওহীঁ পর মিলে থে আর গোপিয়া পিছে সে ফিরে আবে ওহীঁ পর পড়ি পড়ি ওহীঁ পর উদ্ধব জি সে মিলি থি বহুত হি সব দিব্য স্থান হ্যায় তো বো উসমে দেখা উসকি তরফ মে আজ দেখা কি শাহরি ইয়ে অদ্ভুত ইয়ে কদম বখিয়ারি উসমে লাখো গোপিয়া এক জগহ বেঠি সবই রো রহি বড়ি তিরহা রো রহি एक ने कहा देखो तो ये बड़ी सुंदर गंध आ रही है, ये तो कृष्ण की बलमाला की गंध मालूम पड़ती है, हमारी नाक धोखा नहीं देती। ये व्यक्ति जो आ रहा है वो कैसा था? कृष्ण जैसा सांवला, गुण भी ऐसे ही, रूप भी वैसे ही, और कृष्ण ने अपना ड्रेस पूरा पहना दिया है। यहाँ ललिता जी, विशाखा जी, अथवा श्रीमती राधिका जी एक हरे भरे कमाल के वृक्ष को देख करके और उसे निपट जाती थी दृश्य समझकर और उसे बातचीत करती थी। आज तो उनके जैसे देखने पर भी और उनके रूप से भी वैसे और उनको अपना ड्रेस भी कृष्ण ने पहना दिया है। और तभी राधिका जी को प्रेम, वो प्रेम ने उसकी रक्षा जाकर के निपट नहीं गई। बादलों से मिलने की चर्चा कर काला जी देखते हैं उसको कृष्ण मानती है, किंतु आज दीपक नहीं आया करेंगे ये तो कृष्ण, ये कृष्ण का अनुचर है, कृष्ण का संदेश बात है, जब कृष्ण ने इसे भेजा है एक गोपुरी किसी भी भेजा जरूरत क्या, जरूरत तो कोई है नहीं। यदि भेजा होगा तो हो सकता है हमारा तो इनसे इनसे कोई संबंध नहीं, और यदि संबंध भी था तो खत्म हो गया। क्या था? हमने माना कि हमारे प्रियतम है, उन्होंने माना कि हमारी बल्लभा है, मानने का प्रश्न था, इसलिए ये खत्म हो गया, छोड़ करके चले गए। ठीक है, किंतु अपनी मैया को कैसे भूल सकते हैं? उनका रक्त मांस ये सब कहां से बना? यशोदा मैया के दूध से ही तो पले हैं, इसलिए यशोदा मैया को छोड़ नहीं सकते, नंद बाबा को छोड़ नहीं सकते। यदि मिट्टी का एक बर्तन है वो कह दे कि मैं मिट्टी को छोड़ रहा हूं, तो ये ठीक है कि गलत है? समझो फिर से, एक खड़ा है मिट्टी का और ये खड़ा कह रहा है हम मिट्टी को छोड़ रहे हैं, मिट्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हो सकता है क्यों? तो मिट्टी से ही बना है। तो कृष्ण का जितना अंग है, बुद्धि है, वाक्य है, जो कुछ बना है, ये कहां से बना? मैया से तो बना है, बाप से, तो इनको कैसे छोड़ सकते? ये तो संबंध तोड़ने से भी नहीं होगा। यदि कोई को पुत्र मैया को कह दे कि मैया मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैया छोड़ देगी या संबंध टूट जाएगा? जन्म तक वो जरूर रहेगा, मैया और बेटा का, पिता और पुत्र का संबंध ये छोड़ नहीं सकता, छोड़ने पर भी। इसलिए जो माता पिता का ऋण नहीं चुकाते, माता पिता की सेवा नहीं करते, वो अपने कर्तव्य से स्वर्ग में जाकर के भी वहां पर अपना मान सिखाना पड़ेगा। इस चीज को समझ रखो, जिन्होंने अपने मैया बाप सेवा नहीं की उनको क्या होगा? भले ही अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, सब कुछ कर लेंगे, किंतु यदि स्वर्ग भी हो जाएगा तो उनको अपना मांस काट करके खाना होगा। वाल्मीकि रामायण इत्यादि में देखा है माता पिता से भी हो नहीं सकता, कितने दिनों तक कर्म में कैसे धारण किया, टट्टी और पेशाब भी अपने अंग में रखे, और यदि टट्टी सिर पर भी कर दिया तो हंसते हंसते पूछ लिया, पेशाब भी कर दिया तो गोदी में तो क्या करती है, मुस्कुराते उसके मुख को पूछ देती है, अरक्षित मैया को छोड़ देते हैं लोग, कैसे निष्ठुर और अत्याचारी है, इनको समझना चाहिए। आजकल ये सभ्यता में सबसे बड़ा दोष है, इसलिए इस बच्चे को समझना चाहिए। माता पिता का नहीं तुम हो सकता, और इसी का एक और जो बड़ा माता पिता का भी माता पिता का जगत का माता पिता है, उस गुरु का ऋण तो कभी चूक नहीं सकता। तो गुरु की गुरु को कुपुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी और पिता कभी भी कुमाता और कुमाता नहीं हो सकते। यदि कोई बंदूक से भी अपने पिता को मारा तो कोई कहेगा तुम सुखी रहना, ऐसा हृदय का होता है। ये नंद बाबा क्या प्रसंग बता रहा बोल जाते हैं,
गोपियां को तो माँ बाप से बना, ये कैसे छोड़ेंगे माँ बाप का सम्मान।
हाँ तो वो गोपियां कह रही है, माता पिता से तो ये छूट नहीं सकते, ये माता पिता को सांत्वना देने के लिए जो भी भेजा होगा। दूसरी बात ये कि नहीं, बात ऐसी नहीं, बात ऐसी है कि वो कल से मर गया ना, उसको तेरहवीं देनी है और पिंड देना है, उसको वहां पर पिंड नहीं मिला, ये पिंड लेने के लिए यहाँ पर सब प्रजवासी लोग मरे हुए होंगे, गोपिया को और उनका पिंड लेकर के उसको संस्कार कर। उद्धव जी मन ही मन में मर गए, जेहे पृथ्वी जी आप तो टुकड़े हो जाए, मैं इसके अंदर में समा जाऊं, हमको ऐसे ब्रज में नहीं आना चाहिए था, ये सोच भी नहीं है। आगे बढ़े, देखा क्या केवल मरने ही बाकी है, श्वास बहुत धीरे धीरे आए, ध्यान की कृष्ण संगम वो उसी रूप में विरह में छटपटा रही है और सारी गोपियां उसकी सेवा कर रही हैं। आप लोग अंदाजा कर सकती हैं ये कौन हो सकती है, होश नहीं है, कभी कभी चिल्ला पड़ती है, कभी रो पड़ती है, कभी कुछ ध्यान दी कृष्ण अंग संगम ध्यान कर रही है मन ही मन में। वो यहां से तो गया मथुरा में, क्या कर रहा है, जरूर वहां के जादव पत्नियों के साथ में जरूर कहीं होगा, वो उनका संग कर रहा होगा। कैसे, वहां पर एक रूठती होगी तो एक को रूठाने से मनाता होगा, तब तक दूसरी रूठ जाती है और तो हजार एक एक से सुनिए। हम तो ग्रामीण महिलाएं हैं, हम लोग को सौंदर्य का हल्कों में कोई गुण नहीं, और वो एक एक से बुढ़ी रौपति माँ पृथ्वती ये जादव पत्नियां आएंगी और कभी उठेंगी और वो मनाएंगे सारा दिन रात, उनको मनाने में ही लग जाता हो, और इस तरह से उनका ध्यान करती हुई रूठ गई। देखो कृष्ण मां नहीं है, विरह नहीं, ऐसे बात में होता है प्रसंग कर रहे हैं, याद आ रही है और याद होने से वो बिगड़ गई और उनको मान हो गया, उस मान में भर करके इस लोग सब बोलने लगे, अपने भावों को बतला रहे। उद्धव जी वहां पर पहुंचे, वहीं पर उसी समय में कृष्ण ने एक फौड़े का रूप धारण किया और मंडराते हुए श्रीमती जी के चरणों के पास में जो ऐसे सो रही हैं, चारों के तरफ में झंकार करते हुए समझा लीजिए कमल का पुष्प है और उसमें मधुपान करने के लिए उसमें प्रवेश करना चाह, राधा जी को बहुत तीव्र मान हुआ। मधुमक्खी तब बंद हो मास विषाण की कुछ बोले माला कुमकुम कुमकुम माने होते क्या,
कपटों के
कपटों का धूतों का राजा, कपट छुड़ा मनी हमारे पैरों को मच्छो, यहां से जल्दी से चला जा, जा कहां जाऊं, मधुपुरी चला जा जहां पर मधु बिकता है, मधु माने शराब को, मधु माने क्या शहर, शहर नहीं
शराब,
यहां पर होता है शराब का दूसरा शुद्ध शब्द क्या, मदिरा शुगर जहां पर बिकता है, कौन बेच रहा है, मधुपुरी में दुकान लगी हुई और मधु का पति कौन है, मधुपति कृष्ण है, तो उनको कृष्ण ही कहें मधुपति मधु का पति, और वो पान करके मधु अब
द्वंद्वहीन
नहीं कंद नहीं कंद कुंद और
मालती
मेरी चमेली मालती ये जाति पुष्प होते हैं उसमें बहुत मधुर रहती है कमल में मधुर उस पर बैठते हैं उसका रस पान कर फिर तो पौधा जाते हैं बाल उग जाते हैं मत हो जाते हैं फिर जिसमें रस नहीं उस पर भी बैठ जाते हैं गोपिया ताना मारे ये किसके लिए ये जो मधुपति है काला जिसका हृदय बाहर काला उलाना दे रही है उस भ्रमर को तू हमारे पास महात्मा था वही से तू मधु पान करके अपवित्र होकर के आ रहा है तुमको ज्ञान नहीं कि हमारे पास में कैसे आना चाहिए मनाने के लिए ये भी तुमको ज्ञान माना कि तुम वहीं से आ रहे हो फिर तो अकल नहीं है तुम पागल हो अरे मैं वो अनबन कुछ कर रहा जंकार पर उसने सोचा जब पैरों में गिर करके गा रहे थे स्वामी जी आप ऐसे रुष्ट क्यों हैं वो तो मदरे कभी पान नहीं करते और कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते उन्होंने आपको मनाने के लिए हमको भेजा है पिछले खिलाफ मान जाए वो कचारी ठोर रहा अरे तुमने अपने गोठों में क्या गुल्फों में क्या लगा रखा है जब बैठता है वो कमल इत्यादि के ऊपर में तो उसके पीले जो होते हैं पराग वो लग जाते हैं पीले उसने समझा क्या श्रीमती जी ने क्या समझा ये कहीं जदुपतियों की स्त्रियों से मिला होगा और उसके माला में का कुमकुम लग गया और लग जाने से उस पर ये बैठा औरा और उसके गुल्फों में ये लग गया वहीं से अपवित्र होकर के आ रहा भागो भागो यहाँ से तुम्हारी जरूरत नहीं है भाव में आविष्ट होकर के कह रही है उद्धव जी सुन रहे हैं थोड़ी देर के बाद में सकल अधर सुधा सकृत अधर सुधा पाई का
मोहिनी पाई
मोहिनी पाई का सुमन से वसंत तत्तजेश अरे जैसे मधुकर मधुकर माने मधु का काम करने वाला मधु कौन कौन है एक तो मधु जानवर छह पैर और एक मधु होती है ये मदिरा उसको पान करने वाला एक मधु होता है मधुसूदन संसार के प्रति जो आसक्ति उसको काट देने वाले को भी मधुसूदन कहते हैं और एक होता है मधु गोपियों के प्रेम का मधु का जो छप करके पान करता है वो कृष्ण मधुसूदन है आज वो भौरे बन करके यहाँ पर है साधारण नहीं उद्धव जी रूप से देख रहे हैं चुपचाप बैठे हुए और ये मान अभिमान भाव कितने तरह के आ रहे हैं कभी चढ़ाओ कभी उतराओ और उसके साथ में उसको गाली गलौज कर रही है कृष्ण को भी कर रही है कैसे जैसे फौरा उत्पन्न होने के बाद गंदे कुलों पर भी बैठ जाता है तो इसको भी ऐसे ही विचार नहीं ब्रज से उतरा ब्रज का मधु पान किया और फिर मथुरा में बैठ गया कहाँ
उप जाते
एक फूल के ऊपर कौन सा फूल एक फूल बड़ा दुर्गंध होता है क्या उसका नाम होता है मुझे याद नहीं बहुत तीव्र गंध उसमें होती है परसों उस पर बैठ गया ज्ञान नहीं इस तरह से गोपियों को प्रेम को छोड़ करके मथुरा में कुब्जा के प्रेम पर रिझ गए ऐसे ये मधुकर है सकृत अथक सुधाम पाई बहुत इसकी सुंदर सुंदर व्याख्या है अभी समय नहीं अभी तो समय होता जा रहा है इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूँ थोड़ा सा रसपान करा दिया यदि फिर पीछे आऊंगा कभी आप लोग मौका देंगे सेवा का अवसर तो इसको विस्तृत रूप से समझाऊंगा तब ऐसा समझ लीजिए जो अंत में गोपियां कह रही है देखो मृग युग बंधन रूपा स्त्री जीत कामयान तात्पर्य इसका ये श्रीमद् भागवत का ये चुनी हुई श्लोक इसको भ्रमर गीत कहते हैं कृष्ण भ्रमर करके इसका पान करने के लिए है इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत है ये मधु क्या है ये राधा जी की वाणी कह रही है अरे हमने सुना जोग माया से जो ये भगवान है जैसे भी हो वो भी तो काले हैं श्याम और ये भी काला है, कालों का संग नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने तो यहां तक कहा है, खबरदार वृंदावन मत जाना, खबरदार वृंदावन। आप लोगों को भी मैं परामर्श दे रहा हूं, आप लोग यदि अपने बाल बच्चों स्त्री पुरुष और संसार का सुख लूटना चाहते हैं, खबरदार वृंदावन में मत जाओ, रूप गोस्वामी का ये वचन। और हम भी करें और ठीक करें, यदि संसार का सुख भोगना है वृंदावन में मत जाओ। यदि पुल से किसी प्रकार से वृंदावन में पहुंच गए तो जमुना के किनारे केसी घाट एक है, खबरदार मत जाओ, जाने से क्या होगा। मैं कहता हूं ना, घर बार भूल जाओगे, पत्नी भूल जाओगे, बेटे का स्नेह भूल जाओगे, पागल हो जाओगे, भिखारी बन करके वृंदावन में जाना पड़ेगा। अरे वहां पर केसी घाट में स्नान करके धीरे धीरे उधर ही चला जाना, वहां पर गोविंद जी का ये मंदिर है, ये गोविंद, गोविंद के मंदिर में मत जाना, कुछ ना मत, सात डोटी से ही वहां पर फूली लेकर के लौट जाना। और यदि आ गया कोई गोविंद जी के सामने और इनका रूप देखा, रस्सी बजाते हुए मोर मुर देखा, उसकी एक मुस्कुराहट पर अपने को फिदा कर देंगे, फिर घाट नहीं लौटना है। जैसे बहुत से हमारे देखो ये ब्रह्मचारी है, एक बार इनको हमारे मुख से कृष्ण नाम सुना, इन बिचारों ने कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका, कोई कहां, कोई बंगाल, कोई इधर का उधर का, ये सब सारे देख रहे हैं, लाल वाले देख रहे हैं ना, इनका घर उजड़ा हुआ है, आप लोग का घर ऐसा नहीं उजड़े, थोड़ा सा कृष्ण की चर्चा सुना दी बस घर छोड़ दिए, रहने का कोई स्थान नहीं। जैसे पक्षी पेड़ों पर रहते हैं ऐसे ही घर उधर भटकते हैं, कोई भी सहारा नहीं, अपने रुलाते हैं, अपनी मैया को रुलाते हैं, बाप को रुलाते हैं, सबको, और यदि स्त्री है तो स्त्री को भी रुला करके आए, साधारण नहीं। ऐसे ही यदि वृंदावन में ये राधा गोविंद जी का दर्शन हो गया और उन्होंने दर्शन यदि दे दिए, घर नहीं लौटना, भिक्षु की तरफ में कुटी बांध करके बिना कुटी के ही ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे। और गोविंद 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 दामो को गुरु मान जाने में कोई दोष नहीं है, किंतु पृथक देवता के रूप में अपनी संसारी कामनाओं का पूजन, ये गोविंद की भक्ति के लिए बहुत बड़ा भारी बाधक है। इसलिए निष्काम भक्ति भी नहीं चाहिए। निष्काम इसलिए कहा जाता है कि जागतिक कोई कामना नहीं, किंतु प्रेम की कामना बनी रहे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, हनुमान जी, पांडवों को और उद्धव जी तक का हमने दिखलाया। ये भक्ति का तात्पर्य के अनुसार में ये भक्तों का था। अब भक्तों को नहीं ले रहे हैं, भक्तों की जो आराध्य हैं, जो कृष्ण की निरंतर सेवा में लगी रहती हैं, कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं, उन श्रीमती राधिका और गोपियों के भक्ति की बात करें, उनके प्रेम की कुछ थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। क्यों मथुरे न समापये, कोई भी चीज हम आरंभ करते हैं तो अंत में हम मीठा से शेष करते हैं, खीर परमांगरा बड़ी रसगुल्ले अंत में खा करके, तब फिर पहले चटनी ले सकते हैं, करेला भी ले सकते हैं और दूसरी चीजें लेंगे, किंतु अंत में जब खाना पीना पूरा हो जाएगा तो अंत में दही भुगा राबड़ी रसगुल्ले इत्यादि मधुर। इसलिए आज ही का दिन, अभी इस टर्म में आज का दिन और शेष है एक घंटा, इसलिए थोड़े समय में संक्षेप में कुछ गोपियों की चर्चाएं करना चाहता हूं जो उद्धव के भी आराध्य है। कृष्ण जब अपनी पाठशाला में पढ़ करके जब मथुरा में लौटे तो जमुना की तरफ में देखा, और मथुरा में अपने राजभवन पर वसुदेव जी के घर पर चढ़ करके देखा, उत्तर की तरफ में पास की वृंदा माता पिता की याद आई, सखाओं की याद आई, ब्रज की याद आई, सबसे अधिक गोपियों की याद आई। उठो ब्रज मुनि विशर आए, उठो हे उठो उठो, मैं ब्रज को भूल नहीं सकता, मेरा शरीर तो है यहां किंतु मेरा मन प्राण सब कुछ आत्मा ब्रज में है, उन सखाओं को कैसे भूल सकता हूं जिनके साथ में मैंने गैया चराई, जो हमारे लिए प्राण देने को तत्पर रहते हैं, उस माता पिता नंद और यशोदा जी को मैं कैसे भूल सकता, नहीं भूल सकता। कुछ देने के लिए आया हूं किंतु मुझे ब्रज में ही जाना पड़ेगा, और गोपियां उनको भूल नहीं सकता। मच्चिता मदगत प्राण तैत दैहिका, वो गोपियां कैसी हैं, मच्चिता। गीता में एक आया है श्लोक, मनमना भव मदभक्तो मदियाजी मां नमस्तु मामे वैश्यसि प्रतिजान प्रियोशिष प्रियोशिष, अर्जुन तुम हमारा प्रिय है इसलिए बतला रहा हूं। सब उपदेशों का गीता का सार तुमको मैं एक शब्द में बतला रहा हूं, मन मना हो, अपने मन को हमारे अंदर दे दो। कैसे दे दे, मन को देना कठिन है, बाइक को कंट्रोल करना ना सहज है, मन को कंट्रोल करना सहज नहीं, इसलिए मन को कैसे दे दें, कैसे दे दें, कृष्ण ने ही बतलाया है कैसे मन मना भाव होता है, और मच्चित मदगत प्राण तैत दैहिक का, सारे दैहिक कार्यों को उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, बातचीत करना छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, हमारे लिए केवल प्राण उनके बचे हैं कि मैं कल आ जाऊंगा, इसलिए कल ही आऊंगा लौट करके, इसलिए हम जीवित हैं। इस चीज को समझे, मन मना भव अथवा मत गच्छिता चित्त को देने से ऐसे नहीं गुजरता है। कैसे होता है जरा एक उदाहरण के साथ में समझिए। गोपियों का कैसा मस्तिष्क चित्त है या मन मनाव है। कोई गोपी कहीं गांव से नई ब्याह करके आई है, 16 वर्ष की अभी उम्र है, बड़ी सुंदरी खूबसूरत है, आज पहली बार अंत गांव में विवाहित होकर के आई। पहले से सुन रखा है श्याम सुंदर के सौंदर्य और आकर्षण के संबंध में। सवेरे का समय था, गोचारण में कृष्ण जा रहे थे, बछड़ों को लाखों बछड़ों को लिए हुए जा रहे थे और लाखों सखा है और सभी लोग कृष्ण की स्तुति बड़ाई कर रहे हैं, हमारे सखा की जय हो, सखा की जय हो। और उस समय में जो जहां सुना गोचारण का समय हो गया, जो जहां था वहीं से अंधा भी अंधे को पकड़ करके कृष्ण को दर्शन करने के लिए आने लगा। जितनी गोप माताएं थी वो देखने लग गई, जितनी नवेलियां थी नंदगांव की महिलाएं ब्रजांगनाएं वो भी झरोखे से कोई देखने लगी, कोई अट्टालिका पर चढ़ गई, कोई अपने कुंज से पास से देखने लगी ये कृष्ण कैसे बंसी बजाते हुए गैयों को बछड़ों को चराने के लिए जा रहे हैं। जब वो नवेली गोपी जब जाने के लिए प्रस्तुत हुई कृष्ण को दर्शन करने के लिए, उसकी सास ने पकड़ लिया, खबर जाएगी तुमको काला सांप डस देगा, कभी विष नहीं उतर सकता, खबरदार मत जाओ, वो बड़ा तेज है, उसका विष बड़ा जहरीला है, वो कभी जीवन भर नहीं उतरता, मत जाना। तो जाने के लिए छटपट कर रही, अरे तो तुम्हारी बेटी क्यों गई, उसको मना क्यों नहीं किया। अरे मैं तुमको कहा समझा रही हूँ, बेटी के बाद पीछे देख रही, तुम मान जाओ मत जाओ। तो जितनी है ब्रज की पथ में है लड़कियां हैं, सभी दर्शन करने के लिए जा रही, हम ही को काटेगा, अरे वो सबको काटता है, किसी को छोड़ता नहीं, तुम मत जाओ, तुमको बचाना मैं चाहती हूँ। तुमने कहा किसे, तो तुम फिर क्यों जाएगी, हम ही को बैठा करके, मैं तो जरूर जाऊंगी, किसी तरह से मान नहीं गई, नहीं मान गई तो देखो ऐसा भुजंग काटेगा जो तुम्हारा पीछ नहीं उतरेगा। वो रोकती रह गई लाल, रुकी नहीं, क्यों, कृष्ण दर्शन की लालसा। ऐसे दर्शन की किसी की लालसा होगी ना, माता पिता डांटेंगे, भाई डांटेंगे, पति डांटेगा, सब पिछली के लोग डांटेंगे, कुत्ते भी भौंकेंगे, किसी की परवाह नहीं होगी, तब कृष्ण मिलेंगे। ऐसे नहीं मिल जाते, बड़े टेढ़े हैं, आते नहीं और जब आते हैं तो निकल करके जाते नहीं है। इतने में वो किसी प्रकार से छटक करके और दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई। जिस समय दरवाजे पर खड़ी हो, कृष्ण बहुत दूर से सबकी इच्छा जानने वाले हैं, समझ गए जी हमारा दर्शन का पहुंचा, बस एक बछड़ी की पूंछ पकड़ी, बछड़ा बड़ा सुंदर, और वो खुदर करके झट वहीं आ गया जहां पर वो खड़ी थी गोपी, पास में आ गई और कृष्ण झट उसको पकड़े हुए, मानो उसको संभालने के लिए आ रहे हैं, उसकी नियत से नहीं, बहुत बहाना भी जानते हैं, बस झट वहीं पर उपस्थित हो गए और अपनी बंसी की नोक से उसके थोड़ी में छू दिया, छुआ क्या उसके चित्त को ही ले लिया, खड़ी की खड़ी रह गई और कृष्ण उसके तरफ में देखते हुए मुस्कुराते हुए उसके हृदय को लेकर गोचारण के साथ में वो चले गए। जब तक चले नहीं गए उधर ही देखती रह गई, जब बछड़े गाय सब चली गई तब भी देखती रही, धूल उड़ते रही तब तक देखती रही, जब धूल भी शांत हो तब तक वहीं पर खड़ी। सास ने कहा था ना काला सांप काटेगा विष उतरेगा नहीं, अब काट दिया बदलाव तो भाई जब मैं चिकित्सा क्या करूं, जग झोरा वो तो चित्त तो वहां है। थोड़ी देर के बाद में जबरदस्ती पकड़ करके घर के अंदर में ले गई, इसको कैसे होश लाऊं, कहिए दधी मत जाओ, घर से दही का मटका लिया, मटकी लिया, वो गई भीतर में राई खरी भी मटकी ले आई, उसको अभी ज्ञान भी नहीं है कि दही है कि राई है, और राई की मटकी ले आकर के और चित्त तो श्याम सुंदर में और मथने लगी। सास आई, ये तो दही नहीं मत रही है, राई मत रही, कहा था ना अरे उठो होश में आओ। फिर भी होश में नहीं आई तो उसके गोदी में अपना लड़का दे दिया और सिर पर एक मटकी, दूसरी, तीसरी, चौथी, जाओ पानी ले आओ, और एक हाथ में रस्सी और डोर, और उस पर भी एक मटकी, दूसरी मटकी, जैसे ब्रिज की होती हैं, ये सारी मटकियों को लेकर के जाओ पानी भर करके ले आओ। पानी भी कहां से, ब्रिज में तो जानते हैं, अब तो निकट में हो गया है कहीं कहीं, नहीं तो गांव के एक किनारे में एक मीठा कुआं बड़ा मुश्किल से मिलता था, वहां से डोल से भर करके पानी लाना पड़ता था, एक दो तीन चार पांच घड़ाएं लेकर के चलती थी। आजकल तो ये सब महिलाएं हैं, एक घड़ा दिया था तो थसक करके बैठ गए हैं, और यदि चक्का, यदि वो आटा पीसने का तो ब्लड प्रेशर ही उतर जाएगा। और पहले वाला जैसे मूसल दे दे तो उठेगा ही नहीं,
काटल हो जाए।
तो वो बेचारी भेज दिया कई कुएं पर, वहां पर और भी पानियां भर रही थी गोपियां। जब वो रखा खड़े को एक एक करके रख दिया, रस्सी को भी ले ली, बच्चे को भी उतार करके रख दिया, अब उसको ये ज्ञान नहीं कि ये बच्चा है कि वो मच्छी है। डोल जैसे बांध करके तो पानी में लगाएगी, तो फंदा बनाया, तो फंदे घड़े में या डोल में ना होकर के, डोलची में ना होकर के, खड़ा का फंदा किस में लगा दिया,
बच्चे में,
बच्चे के गले में लगा दिया। इतने में सब औरतें जो वहां पर खड़ी थी गोपियां, उन्हें अरे ये क्या ही है, क्या कहते ये क्या है, ठीक ही है, अरे इसको भूत लग गया, किसी ने जो नहीं जानती, आज जो जानती है वो उसने क्या कहा, अरे भूत नहीं नंद का भूत लग गया, नंद का भूत लगना बड़ा कठिन है, वो लग जाएगा वो कभी उतरता नहीं, जिसके हृदय में जाएगा फिर उसे निकलेगा नहीं। उतना कहीं उनको मारने का, जब जैसे जाने नहीं देंगे, हैं यहां आ गई अब मैं छोड़ नहीं सकता, अकाशु बकाशु तृणा भर्त जो भी आए किसी को छोड़ा नहीं, क्या किया, किसी न किसी रूप में अपना लिया। यदि आप लोग हृदय से एक बार भी यदि कह दिया हे कृष्ण मैं तेरा हूं, इस ऋण को नहीं चुका सकते, किंतु हृदय से होना चाहिए, धोखा देने के लिए नहीं, सत्य कृष्ण का होना चाहिए, कृष्ण का बन जाओ, एक बार निकल जाए हे कृष्ण मैं तुम्हारा, अपना सर्वस्व उस पर कृष्ण न्योछावर कर दे। ये गोविंद जी साधारण नहीं है, यद्यपि गोपियां ग्वाला ये सबके साथ में रहते हैं, किंतु सर्वस्व लेने वाले और देने वाले, इसलिए इस कृष्ण में ऐसा कोई दयालु और प्रेमी रसिक भाव नहीं मिलेगा, इसलिए इनके चरणों में आप न्योछावर कर दो, आज ही से इनका भजन करना आरंभ कर दो। इनके जितने भी नाम है उन सभी नामों में ये नाम श्रेष्ठ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जब हमारे गुरु जी नाम को मंत्र दिया तो मैं सोच रहा था कि गुरु जी ने ये दिया, राधे राधे कृष्ण तो दिया नहीं, राधा गोविंद तो दिया नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं दिया, राधा हरे कृष्ण में तो ये डायरेक्ट राधा जी का नाम है। फिर संग करते 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 गुरु जी का संग किया, पूछा तो मालूम पड़ा राधा नाम में से भी और कृष्ण नाम से माधुर्य इस हरे और राम और कृष्ण में है, इसके बहुत अर्थ है, बहुत विशाल रस इसके अंदर में समाया हुआ है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु इस नाम को नहीं करते और दूसरों को नहीं देते। रसिकाचार्य ये रूपोष उन्हीं के लिए ठाकुर जी हैं, कौन राधा गोविंद जी बड़े रसिक हैं, यदि एक बार आ जाता है उनको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए कहा मन मना मत भाव। और अर्जुन इनको उद्धव जी को कृष्ण कह रहे कि जाओ गच्छ उद्धव सम्यक, हे सम्यक ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता हमारे लिए बड़े दुखी हैं।
पांच मिनट
यहाँ तो तीन मिनट माता पिता बड़े दुखी हैं, और उससे भी कौन दुखी हैं, हमारी सखियां, और उनमें सखियों में भी राधा जी बड़ी दुखी है। पर इसमें जाओ उनको सांत्वना दिया। उद्धव जी ने सोचा मैं बहुत पंडित व्यक्ति हूं, मैं समझा क्या करके उनको सांत्वना दे दू, किंतु हुआ क्या। अब हम अगले अभी आरती के बाद में आप लोगों को बताऊंगा। जय जय श्री राधा गोविंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपने कथा प्रसंग मैं बदला रहा था, उद्धव जी आए कृष्ण से मिले, कृष्ण के आंखों में आंसू भर रहे, उद्धव जी के आंखों में हाथ लिया और बोले, और बोले उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता गृह में तड़प रहे हैं, उनको सांत्वना देना, और उनसे भी यदि हमारी प्रियतम आकृतियां जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व सब कुछ किया है, जिनके प्राण के लोग अटके हैं, इसलिए कि मैं कह करके आऊंगी कल न परसों आऊंगा, आप जाकर के उनको सांत्वना देने की कोशिश करें। अपने तरफ से कुछ मत कहना, मैं तो उनका ग्रह अपनी और बढ़ जाएगी, हम जो तो तुमको दे रहे हैं संदेश ये अपनी थैली में भर लो, पत्र नहीं संदेश दिया, और इससे न मिले तो इससे उनको शांत करना, इस तरह से बहुत से संदेश उन गोपियों को दिया, और खुद सोने का रथ पर बैठा करके उनको भेजा। उस समय नंद जी के पिताजी मैया और गोपियां सब नंद गांव में थी, जब से कृष्ण गए हैं गोपियां घर में नहीं लौटी, वहीं पर कदम किया एक है नंदगांव से कुछ और बरसाना की तरफ में, वहीं पर बिना खाए पिए बिना कपड़े धुए और गिरावस्था में पड़ी हुई उनकी प्रतिमूर्तियां जोग माया ने उनके घरों में भेज दिया है, इसलिए पतियों को और घर वालों को कोई चिंता नहीं, और वो खुद गिरह में वापस कृष्ण का आएंगे। उद्धव जी ब्रज में गए, इसके पहले समझिए जब कृष्ण वृंदावन में थे तो उन गोपियों की कैसी स्थिति थी मन की, इस चीज को समझने के लिए मथुरापुरी में जादू पत्नियां जो थी उनके मुंह से सुनी उनकी दिनचर्या गोपियों की कैसी है। कृष्ण बलदेव को अक्रूर जी लाए, कुबल्यापुर को मारा, राजसभा में प्रवेश किया, कृष्ण बलदेव जी हाथियों की हाथी के दांतों को अपने कंधे पर लिए हुए वीरभद्र से प्रवेश कर रहे हैं, मुख पर हाथी के और भाव के रक्त के कुछ छींटे लगे और भी बड़े मनोहर लग रहे हैं, जाते ही ताल ठोक करके मुष्टिक और ताल मुष्टिक और चार दोनों ने कृष्ण को पकड़ करके खींचना आरंभ किया, आ जाओ हम लोग गिर जाए, महाराज हम ऊपर से देख रहे हैं उनके रिक्रिएशन के लिए हम लोग परस्पर ये युद्ध कर रहे हैं और कोई बात नहीं है, इसलिए उनको मन को सुहाने के लिए हम लोग बैठिए, हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्लिंग करके मन क्रीड़ा करके हम लोग सब लोगों की प्रसन्नता करें। कृष्ण ने कहा ये तो उचित नहीं, अपनी उम्र के लड़कों के साथ में हम लड़ सकते हैं, आप लोग तो बड़े बड़े काम के समान की तरह लंबे चौड़े ऊंचे और परिपक्व पहलवान है, और मैं कहा अभी छोटा सा बच्चा शिशु हूं, इसलिए अपने उम्र का कोई हो तो उसके साथ में हम कुछ दिखला सकते हैं मल्ल क्रीड़ा, आप लोगों के साथ में नहीं। अरे तुम पुतना को सही कहां पठा दिया, गिरिराज गोवर्धन को तुमने उठा लिया, तुमको प्रश्न तनिक भी परिश्रम नहीं लगा, और अकासुर बकासुर काली जवन इत्यादि सबको तुमने चुटकी बजाते ही उनको मार डाला, इसलिए तुम कम पहलवान और वीर नहीं हो। तो जबरदस्ती पकड़ करके उसे मल्ल की तरफ में फेर दी। उस समय में वहां पर गंध बाबा भी बैठे थे, वसुदेव देव जी भी थी, उग्रसेन भी थे, जादू की महिलाएं थी, ब्राह्मण लोग थे, और सब लोग वहां पर सोचा था कंस ने नंद के सामने देवकी वसुदेव के सामने उसके पुत्र को मारूंगा, इसलिए सब लोगों ने क्लिक करके बहाना बना करके एक साथ में इसके ऊपर में आक्रमण करके मारने का उपाय जो लोगों ने रचा। तो जिस समय में वो लोग पकड़ करके खींच रहे थे उस समय में और तो कोई नहीं, और वो तो बड़े डरे हुए थे सहमे हुए, किंतु जादू की जो पत्तियां थी रमणिया उन लोगों ने कहा, क्या कहा, ये बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, धर्म की हानि हो रहा है, एक छोटे से शिशु को पकड़ करके ये महाकाल जैसा व्यक्ति पकड़ करके उसे मार रहा है, और वो सभा जी को तो सभा को अधर्म हो रहा है, हम इस सभा में नहीं रहेंगे, और किसी भी धार्मिक व्यक्ति को याद नहीं रहना चाहिए, और धर्म और पापियों की ये सभा है, इस दोनों छोटे शिशुओं को इन्हें किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र करके मार देना चाहिए। और ये कहते भी और कृष्ण का रूप का वर्णन करने लगे, कहो ब्रज में कोई धन्य है तो ब्रज रमणीय पुण्यवत ब्रज को गोपवत हो गोविंद एवं अभ्यात्म रूप भावा, ये ब्रजवासियों का ये वृंदावन क्यों गोपियों के लिए ही यह प्रसिद्ध है, धन्य है यहाँ पर ये गोपियां हैं, वो क्या करती है पुण्यवत ब्रज को जटायु लिंग पूरा प्रणाम पुरुषा बन चित्र मात्र, ये पूर्ण रूप में ये पराब्रह्म स्वयं यहाँ यशोदा जी की गोदी में खेल रहा है, गोपियां को अपने आंखों से भर भर करके दिया उसे उनका दर्शन कर, यदि कोई धन्य है तो ब्रज, ब्रज इसलिए धन्य है कि गोपियां यहाँ पर गोपियों के लिए ये ब्रज धन्य है। बूढ़ा पुराण पुरुष पुराण पुरुष वेद के प्रतिपाद्य पुराण के प्रतिपाद्य परम पुरुष कौन है, ये श्री कृष्ण गोविंद जी हैं। आज ब्रज की भूमि में क्या करते हैं, खेलते हैं, और गोपियां नैन उनसे भर करके प्याले से नैन रूपी और माधुर्य को उनकी लीलाओं के माधुर्य का ये पान करने वाली है, इसलिए ब्रज धन्य है। वो क्या करते हैं उनकी दिनचर्या कैसे जातो हमे वहां मथनों पहले पर प्रेम खना दो उखन मर्जना गायन गोप्यो जनिता अनुराग गायन गोप्य पुरुक्रम चित्त धन्यास्म मुख धन्यास्म पुरुक्रम चित्त जान। जैसे रथ पर कोई सवार होता है तो मान लीजिए गोपियों का मन जो है ये रथ है, उस रथ पर कौन चढ़ा हुआ है, धन्य पुरुक्रम चित्त जान, उनका मन ही रथ है, और दिन रात कृष्ण उस पर आरूढ़ रहते हैं, एक सेकंड के लिए उनके चित्त से ये कृष्ण उतरते हैं, अथवा इसका अर्थ ऐसा भी होगा धन्य ब्रजस्त्रिय पुरुक्रम चित्त जान, कृष्ण का चित्त है वह रथ है, कृष्ण के मन में गोपियां ऐसी समाई हुई है जो उनके मन के ऊपर में सब समय रथ पर चढ़ी हुई आरूढ़ है, उनके मन से उतरती नहीं, अतः कृष्ण क्या करते हैं सब समय गोपी को की चिंता, क्यों आत्माराम कृष्ण है, आत्माराम किसको कहते हैं, कृष्ण की आत्मा है कौन गोपियां हैं, इसलिए कृष्ण आत्मा उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं गोपियां, ऐसा नहीं कि कृष्ण को कोई इच्छा ही नहीं, गोपियों के बिना रह नहीं सकते, ऊपर में सो जा सो जाना गोविंद दाओ
कृष्ण यहाँ पर पंजरे में बंद है किसके कंस के कारागार के अंदर में
घुसी मारी, मुस्टिक ने मारी और उसमें कृष्ण को ताव आया, गुस्सा आया, फिर रस का क्रोध से आंखें लाल हो गई और कुछ वीर रस में देखा, ऐसे कृष्ण को देखा और गोपियां कैसे देखती, बंसी बजाते मुस्कुराते हुए कृष्ण को, हंसते हुए और अपने आंखों से कृष्ण से कुछ प्रणय की भिक्षा मांगते हुए, मानो उनकी आंखें क्या कर रही है कृष्ण की, हमें कुछ भिक्षा, ऐसे कृष्ण को देख रही है कौन गोपियां, और यहाँ पर प्रियंका पर तो उस कृष्ण को देख रही है, इसलिए धन्य है वो ब्रज की स्त्रियां जो कि कृष्ण का ऐसा सुंदर दर्शन करती है। उद्धव जी सभा में होंगे, जरूर होंगे उद्धव, उन्होंने सुना होगा ये सब चीजें, और जब ब्रज जा रहे हैं तो उन्होंने सोचा आज हमारा परम सौभाग्य है कि कृष्ण ने हमको ब्रज में भेजा, जरा इन गोपियों को तो दर्शन तो कराओ, जिसको ये करें, और कृष्ण दिन रात उन गोपियों की बातें कहते हैं, उस गोपियों की चरणों की जाने के वंदना, ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी इतनी महिमा अपार है, जो कृष्ण दिन रात उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। अरे द्वारकापुरी में तो रुक्मिणी के पलंग पर सोए हैं, रुक्मिणी जी उस पलंग पर है और उनका अंचल पकड़ करके कहते हैं राधे राधे, उठो भूल जाते हैं कि ये रुक्मिणी है, ये सप्त भामा है, कभी करते अरे भैया कहा, अरे श्यामली धवली कृष्णी कालिंदी गाय पुकारते, कभी ललिते विशाखे तुम हम पर रुष्ट हो गई रात में रुकते, और ये लोग देख कर कहते कि हम ये 16108 कृष्ण के चित्त को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते, ये पारी है गांव की और उन्हीं की दिन रात चिंता करता है, सोते उठते बैठते सब समय उन्हीं की, बोलो बड़े आश्चर्य कितनी सुंदरी कितनी मधुर है इसकी कल्पना नहीं कर सकती। उद्धव जी मन में कुछ सुनते सुनते वहां पर पहुंचे और उनकी प्रारंभिक दो एक बातें तो हमने बता दिया है, अब थोड़े से और आगे बढ़ता हूँ। उद्धव जी ने क्या देखा, जिस समय शाम को वहां पर पहुंचे नंद बाबा वहां घर के अंदर में थे, अंधे हो रही है यशोदा मैया, दिन रात पानी पड़ रहा है उनके आंसू, अब कुछ देखना नहीं चाहते, बहुत कुछ देख लिया, नंद बाबा लज्जा के मारे परसेंगे निकलती, गोपियां कहती हूँ लाना देती है, अरे बाप ऐसा जो बेटे को बेच आया पकड़ो और पकड़ो, धन्य है तू पिता, ऐसा पिता कभी नहीं हुआ जो अपने बेटे को बेच आया, वो वहां से कृष्ण कहने नहीं थे ले आए इसलिए उदाहरण को किया गया, ताना मारते इसलिए नंद बाबा कभी घर से नहीं निकलते, दिन रोक रोते रहते हैं पागल हो गए, जो सुधा जी और पगली हो गई, उनकी कथा सुनेगी कैसे पगली हो गई है, एक दिन तो वो दोपहर में जेठ की चिलचिलाती हुई धूप में खड़ी हो गई और कृष्ण की खिलगुली छोटी सी बात दिया और नदी प्यार किया कि कोटिली में बांध दी और कहीं जाने की चेष्टा करने लगी, एक सहेली आई बोली जिसमें भाई सखी तू कहाँ जा रही, तो मैं जा रहा हूँ कि हाँ हमारा लाला है, कहाँ जा रहा है, मैं मथुरा पुरी जा, क्या करेगी जा रहा है, वहां देवकी की देवकी पाठरानी है उनके पास जाऊं, क्या करोगी, उनके घर में हवेली में झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन मलूंगी, जूठे साफ करूंगी और कहेंगी जी महारानी देवकी जी आपसे यही निवेदन करती हूं जहाँ कृष्ण की लीलाएं नहीं हुई, कृष्ण की चरणपुड़िया चरण की छाप नहीं, वहां पिकल हो जाते हैं और यार आज आ गया तो गोवर्धन चले जाते हैं, गोवर्धन के कुंज कुंज में कृष्ण की लीला हुई है, वहां पर तो और भी कृष्ण के चरण चिन्ह है, स्मरण ऐसा होता है रह नहीं सकते, अंत में पिकल होकर के चले जाते। अंत में उद्धव जी नंद के घर में पहुंचे, लोगों को उसे पता लगा कि कृष्ण का मित्र उद्धव आया है, से ये के भाई के लड़के थे, हमारा भतीजा आया है। घर से बाहर निकले, अंधेरा शाम हो गया है, उद्धव को लेकर के घर में गए, बोल नहीं सकते कुछ, बोले आप उसे ने तो कृष्ण की संबंध में पूछ नहीं सकते, कृष्ण का स्मरण होते ही कला रह जाता है। लेकर के गए, सोचा कि पहले इसको कुछ खिलाऊं, थका हुआ होगा, बहुत दूर से आ रहा होगा, घर में कुछ नहीं, रसोई घर खाली पड़ा, चौका कभी आज तक लीपा पोता नहीं गया, चूल्हे में मक्खन ने जाल बांध दिया, क्यों रसोई होनी नहीं है, किसके लिए रसोई बनी, कृष्ण है नहीं किसके लिए रसोई बनी, रसोई बननी बंद है, मक्खन ने जाल बांध दिया और बर्तन सब ऐसे बिना मांजे हुए औंधे पड़े हुए हैं, घर के घर सारी चीजें अस्त व्यस्त है। एक ब्राह्मण को खबर दिया गया, वो ब्राह्मण किसी प्रकार से दूध और चावल मिला करके बिना मीठा का ही जैसा उसका घर में था वैसे घी पका करके ले आए, उद्धव जी को खिलाया, इन लोगों का प्रेम देख करके उद्धव सोचने लगे मैं समझता था कि मैं भगवान के सामने बस, फिर खिला पिला करके जब थोड़ा सा आराम हो गया तो उद्धव जी से ये पूछना चाहते हैं कृष्ण के संबंध में, हमारा लाला कैसा है, कृष्ण कैसा, बोल नहीं सकते, आते ही बड़ा मर जाता है, आंखों में से आंसू टपकने लगता है, जब विकल हो गए नहीं बोल सके तो उन्होंने अंत में बड़ी मुश्किल से धैर्य धारण करके कहा उद्धव हमारा भैया वसुदेव ठीक है, कुशल से है, उसमें बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, उसके सारे लड़कों को कंस ने मार डाला, आज सौभाग्य की बात है कि वो अपने पापों से ही ये कंस मारा है, और इतना करते करते बस कृष्ण का थोड़ा सा स्मरण हो आया, बोले कृष्ण कैसा है, कंडीशन लाला कैसा है, और रोने लगे, इतना रोने लगे जिसको देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए, उनके आंखों में आंसू नहीं देख रहे थे, केवल इतना रो क्यों रहे, लोग पूछते हैं कि भक्त लोग इतना रोते क्यों, अब उनके हृदय से पूछिए वो भी नहीं बता सकते कि हम क्यों रोते, बड़ा मुश्किल। उद्धव जी ने देखा ये जगत में कोई सौभाग्यवान है तो नंद बाबा से कोई पढ़ करके सौभाग्यवान, सब लोग अपने बेटे के लिए पत्नी के लिए पुत्र के लिए और लोगों के लिए रोते हैं, किंतु कृष्ण को अपना बेटा मान करके और इतना रोना, पागल हो जाना, उन्मत्त हो जाना, ये तो देखा नहीं जाता, इसलिए शास्त्रों में उसको कहा गया है महा सौभाग्यवान। तो मैं ये क्या कहूं कि आप खूब रोइए, नंद बाबा बड़े सौभाग्यवान है, खूब रोइए तो सांत्वना तो होगी नहीं, ऐसे कहने से सांत्वना खूब रोइए, मुझको तो कृष्ण ने भेजा सांत्वना देने के लिए, तो सांत्वना नहीं है तो फिर हाथ नहीं पड़ जाएगी और रोएगी और दे, इसलिए मुझे क्या कहना है, क्या कहूं जी तुम मत रहो, अरे जी एक बूंद यदि कृष्ण के लिए आंसू आ जाए तो उसका जीवन सार्थक हो गया, जन्म जन्मांतर सार्थक हो गया, कृष्ण के लिए आंसू आए। अभी कोई बेटे को कुछ हो जाए ना, देखिए जी कितने आंसू आते हैं, पत्नी बीमार पड़ जाएगी तो देखिए, और यदि किसी का अंत काल हो गया तो देखिए जी कितना रोते हैं, कृष्ण के लिए रो आई आए तो हाँ जी महाप्रभु। कृष्ण के लिए रो रहे हैं, अपना बेटा समझ रहे। वो किसका बेटा था? वो बेटा किसका? वो तो स्वयं प्रभु भगवान है और उसको अपना बेटा मान करके ये रो रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। तो क्या कहो, मुझे मत रोइए, तुम्हारा शास्त्र गला पकड़ लेंगे, जैसे ऐसा मत कहो। और यदि कहो कि क्यों रोइए, तो ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं कहूँ क्या? उद्धव इतने बुद्धिमान, विद्या सप्तम, बृहस्पति के शिष्य, कृष्ण के सखा, आज अकल उनकी पूरी बंद, कुछ नहीं सोच सके। मैं क्या कहूँ और नहीं कहूँ, इतने बड़े विद्वान जो कृष्ण से सब समय तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, आज उनकी बोली बंद हो गई। तब पश्चात कहे, ठीक ही, ये जरूर सौभाग्यवान है। इसलिए वो बोले, नंद बाबा, आप और मैया यशोदा, संसार भर में यदि कोई सौभाग्यवान है तो आप ही भगवान है, जो भगवान को आप बेटा मानते हैं। इतने में नंद बाबा जो रो रहे थे, जरा शांत हो गया, बोले, अरे बेटा तुम ये क्या करते? हमने सोचा कि पढ़ लिख करके अब तू बड़ा हो गया, बुद्धिमान हो गया होगा और कृष्ण का साथी भी है, जब अकल होगी। किंतु मैं देखता हूँ कि अकल का दांत भी तुमको नहीं गिरा, जैसे कहते तैसे। अरे देखो, बाप एक था, कौन बाप? महाराज दशरथ, एक बाप। बेटा चला गया बनवास और उसने कहा क्या, हा राम, हा राम, और हा करने के बाद राम नहीं कर सका, प्राण छोड़ दिया। मछली बिना पानी के प्राण छोड़ देगी, और अभी तक मैं वज्र हृदय का बना हुआ, अभी तक जीवित हूं, जो मर नहीं गया बेटे के। और तुम कहते हैं जो तुम्हारा बेटा भगवान है, मैं तो पहले नहीं जानता था कि बेटा हमारा भगवान, अब मैं जाना कि हमारा बेटा भी भगवान भी है। अरे जिसका कोई बेटा, यदि हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो जाए तो मैया का हृदय कितना गर्व से ऊंचा हो जाए। आप लोग ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, बड़े गरीब परिवार के ब्राह्मण के लड़के थे, पढ़े लिखे भी खूब अधिक नहीं थे, संस्कृत के शास्त्री और कुछ अंग्रेजी पीछे से पढ़ा। और जब वो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हो गए तो उनकी बहू और उनकी मैया को कितना आनंद हुआ होगा, आप बताइए। तो आनंद बाबा कह रहे हैं, मुझे तो पता था कि वो साधारण हमारा बेटा, आज हमको मालूम हुआ कि हमारा बेटा ये त्रिभुवन के ईश्वरों का भी ईश्वर है और हमारे घर में बेटा आया। किंतु तब तुमको ये पता नहीं, हमारा बेटा भगवान है। ठीक है, आज हमारा सौभाग्य आता है कि बेटा हमारे घर में भगवान बन करके आया है, किंतु मैं ऐसा अयोग्य उसकी सेवा करने के लिए गया, इसलिए हमको छोड़कर के कोई दूसरी जगह में प्रेम पाने के लिए गया, क्योंकि उसे मैं प्रेम नहीं दे सका, मैं बहुत ही अयोग्य हूं। हमारा आया हुआ रत्न और हाथ से निकल गया, बदलाव तो संसार में दुर्भाग्य।